नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 10 से आरंभ करेंगे, लेकिन इसके पूर्व के हम अध्ययन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि हम सब इकट्ठे बैठकर आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदयों को और हमारे विचारों को खोल दीजिए, ताकि प्रभु जब हम आपके जीवित वचन का मनन करें, यह हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, आपका सत्य वचन हमारे हृदयों में उतरने पाए और हम उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आज के अध्ययन पर आप अपने आशीष दीजिए। जो हमारे भाई निराश हैं, दुखी हैं, परेशान और चिंतित हैं, प्रभु आप उन पर भी अपने अनुग्रह करें, ताकि वे भी इस वचन के द्वारा आशीष को पाएं और छुटकारा पाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी विनती को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह गूंगी आत्मा से ग्रसित जवान को ठीक करते हैं, और इसी प्रकार हमने ये भी देखा कि यदि हमारे हाथ पैर रहते हैं और हम नरक में जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। इतना ही नहीं, यदि हम अंधे और लंगड़े होकर भी स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो यह हमारे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति नर्क से बचाया जाए और उसके राज्य में आए। मित्रों, आज हम उसमें और आगे बढ़ते हैं और अध्याय 10 में आते हैं, और इसमें भी हम कुछ खास विषयों पर विचार करेंगे। यहाँ पर हम पाते हैं कि मार्कुस द्वारा दी गई भौगोलिक स्थितियां अति रोचक हैं। पहला पद दर्शाता है कि यीशु वहां से चलकर यहूदिया की सीमा में यर्दन के पार आया, और मार्कुस 9 अध्याय उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं कि वे वहां से चलकर गलील में होकर जा रहे थे, और वह नहीं चाहता था कि किसी को उसकी उपस्थिति का समाचार मिले। वह नहीं चाहता था कि भीड़ उसके पीछे हो ले। यहूदिया की सीमा में यर्दन के पार अर्थात पूर्वी क्षेत्र में वे थे। यह क्षेत्र दिकापुलिस भी कहलाता था, जिसका अर्थ है 10 नगर। परंतु यहां भी जनसमूह उसके पीछे हो लिया और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें उपदेश देने लगा। मित्रों, यह उसकी अंतिम यरूशलेम यात्रा थी। यहां भी उसके खून के प्यासे जो उसे मार डालना चाहते थे उसकी टोह और उसकी खोज में थे। एक बात सदैव स्मरण रखें कि वे समझने के लिए उससे प्रश्न नहीं करते थे, वे उसे फंसाने के लिए प्रश्न पूछते थे। मित्रों, विवाह और तलाक के विषय उनका अपना ही दृष्टिकोण था, परंतु उन्होंने यह छलपूर्ण प्रश्न किया, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? मित्रों, यह प्रश्न तो चतुराई का था, परंतु उस समय यह प्रश्न सबकी जुबान पर था, क्योंकि हेरोदेस ने अपनी पत्नी को त्याग कर अपने भाई की पत्नी से विवाह किया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को इसका विरोध करने पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यीशु ने कहा, नहीं, उसने मूसा की व्यवस्था का खंडन तो नहीं किया, परंतु हेरोदेस की काली सूची में अवश्य आ गया। यहां ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि यीशु की मृत्यु का कारण यह नहीं था। जिस प्रकार यूहन्ना ने हेरोदेस का विरोध किया और उसे मार डाला गया, उसकी तुलना हम यीशु के साथ नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर यही यीशु यदि हां कह देता तो वे उसे शिक्षा में दोषी ठहराते। मित्रों, यीशु में एक बड़ा ही अच्छा गुण था कि वह प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछकर ही देता था। अतः उसने उनसे पूछा, जिसे हम मार्कुस 10 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु जानता था कि वे यही उत्तर देंगे, क्योंकि व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसके 1 और 2 पद में मूसा की व्यवस्था का संदर्भ है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। अतः आप देखते हैं कि मूसा ने तलाक की अनुमति दी थी, परंतु सत्य तो यह है कि न तो यह मूसा की इच्छा थी और न ही परमेश्वर की इच्छा थी कि स्त्री या पुरुष किसी भी बहाने से तलाक दें, परंतु समय के अंतराल में धर्म के अगुओं ने इस नियम को विकृत करके यहां तक गिरा दिया कि यदि आपकी पत्नी ने रोटी जला दी है तो आप उसे तलाक दे सकते थे। मित्रों, प्रभु यीशु मूल अवस्था की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, वह विवाह पर ध्यान केंद्रित कराता है। आज तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है। युवा वर्ग विवाह करते समय पासवान या पादरी से परामर्श नहीं लेते, परंतु विवाह के पश्चात वे तलाक पाने के लिए पादरी से कारण की खोज अवश्य करते हैं। देखिए यीशु इस प्रश्न को कैसे संभालता है। वह पहले विवाह के बारे में कहता है और फिर स्पष्ट करता है कि पाप के कारण परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में यह प्रावधान रखा। मार्कुस 10 उसके 5 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मित्रों, यीशु ने सृष्टि के आरंभ में पाप के आने से पूर्व परमेश्वर के आदर्श की ओर ले जाना चाहा। उस समय तलाक का प्रश्न ही नहीं था, परमेश्वर की योजना में तो मनुष्य के लिए भलाई ही थी, वह वैसी ही है जैसे हत्या। परंतु परमेश्वर ने हत्यारे को क्षमा कर दिया। तलाक भी पाप है, परंतु तलाक देने वालों को परमेश्वर क्षमादान दे देता है। मेरे विचार में यह परिस्थितियां ऐसी है जिनमें तलाक पाए हुए मनुष्य फिर से विवाह कर सकते हैं, यह धर्म शास्त्र के विरोध नहीं होगा। मैं समझ नहीं पाता कि हम हत्यारे को क्षमा कर सकते हैं परंतु तलाक लेने वाले या देने वाले को नहीं। हम अनुग्रह से बचाए गए पापी हैं। मित्रों, यीशु के कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि विवाह माता पिता और संतान के संबंध से भी गहरा संबंध है, और इसमें संदेह नहीं कि संतान को देखभाल करने का कानून में प्रावधान है। उसी प्रकार तलाक का भी कानून में प्रावधान है। यीशु का कहना है कि विवाह परमेश्वर की ओर से होता है, जो सृष्टिकर्ता की आरंभिक इच्छा थी। इसका उल्लंघन पाप है, परंतु यह पाप अक्षम्य नहीं है। मूल समस्या विवाह में यह होती है कि जीवन साथी का चुनाव गलत हो जाता है। जिनको एक दूसरे विवाह नहीं करना चाहिए वे विवाह कर लेते हैं। सबसे पहले तो पाप यह है कि उन्होंने विवाह किया। मसीह विवाह में परमेश्वर चाहता है कि वह साथी चुन कर करे, ताकि वे परमेश्वर की निकटता में बने रहें। हम मार्कुस 10 अध्याय उसके 10 पद से 12 पद में पढ़ते हैं, और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। मित्रों, तलाक के विरुद्ध धर्मशास्त्र में पाया जाने वाला यह सबसे अधिक कठोर कथन है। इसका अर्थ निर्धारण कैसे करें? इससे पहले कि किसी नियम का प्रतिपादन किया जाए, धर्मशास्त्र में विदित सब उदाहरणों का अवलोकन किया जाना उचित है। मत्ती में दिया गया समानांतर पद प्रकट करता है कि तलाक का कारण व्यभिचार है। मार्कुस ने इसे अनदेखा क्यों किया? मार्कुस रोमियों के लिए लिख रहा है, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया, क्योंकि रोमी मूसा की व्यवस्था को नहीं जानते थे। मत्ती ने यहूदियों के लिए सुसमाचार लिखा था और वे व्यवस्था को जानते ही नहीं थे, व्यवस्था उनके पास थी। पौलुस रोमियों के पत्र 7 अध्याय उसके 2 पद में विवाह के विषय में लिखता है, परंतु वहां विषय तलाक का नहीं है। विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। यहाँ पौलुस एक स्थापित नियम का संदर्भ दे रहा है कि पत्नी अपने पति से तब तक बंधी है जब तक कि वह जीवित है, और यह वह एक विश्वासी और व्यवस्था से संबंध में उदाहरण स्वरूप कह रहा है। मूसा की व्यवस्था में तो अनिष्ट पति या पत्नी को पथरवाह करने का निर्देश था, जिसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 22 अध्याय और उसके 22 से 24 पद में पाते हैं। आज ऐसा नहीं है, अन्यथा पत्थर के ढेर इतने अधिक होंगे कि चलना दुभर हो जाएगा। मूसा की व्यवस्था के अनुसार देखें तो व्यभिचार का दोषी पति या पत्नी मृतक स्वरूप है। धर्मशास्त्र में तलाक का एक ही स्वीकृत कारण है, अनिष्ठा। निर्दोष पक्ष विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, यह मसीह के शब्द हैं। मित्रों, तलाक और बच्चों को आशीष देने के विषय पर मरकुस और मत्ती दोनों ही लिखते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे कुछ कहना चाहता है। बच्चे विवाह की अबोध उत्पत्ति हैं और तलाक दो गुना बुरा होता है, क्योंकि इसमें बच्चे भी कष्ट भोगते हैं। आज टूटे परिवारों के बच्चों को देखिए कि कितने बच्चे संकट में फंसे हुए हैं। इसे दुर्घटना न समझे, यह तलाक का परिणाम है। बहुत से बच्चे बुरे कार्यों में फंस गए हैं, उनके जीवन बुराइयों में उलझे हुए हैं। कई लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि परिवार में तलाक है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम मार्कुस 10 उसके 13 से 16 पद में आगे पढ़ते हैं। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दिए। मित्रों, आवश्यक नहीं है कि बच्चे बड़े होकर ही यीशु के पास आए। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होकर वे यीशु को ग्रहण कर लेंगे। यीशु तो कहता है कि उसकी मनोकामना यह है कि वयस्क बच्चे बन जाएं। आज हम बढ़ने, विकास करने और ज्ञान ग्रहण करने की बात करते हैं। यदि यह परमेश्वर के संतान बन जाने के बाद हो तो बहुत अच्छा होगा। हमें अपनी चतुराई, अपनी सरलता, अपना उत्तम ज्ञान आदि सब त्याग कर बच्चे का भोलापन अपना लेना चाहिए और बच्चे के सीधे साधे विश्वास में मसीह यीशु पर भरोसा रखना है। मित्रों, यीशु ने बच्चों को गोद में लिया और उन्हें आशीष दी। उसने और किसी को गले नहीं लगाया था। मेरे मित्रों, उसने बच्चों को गोद में लिया क्योंकि उन्हीं को वह स्वीकार करेगा। बच्चा जब अबोध होता है या अबोध में मरता है तो वह उसके पास चला जाता है। हम मार्कुस 10 उसके 17 और 18 पद में आगे पढ़ते हैं। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु की यह शिक्षा आज के युग में अति प्रशंसनीय है, जहां भौतिकवाद का बोलबाला है। मत्ती के सुसमाचार से स्पष्ट होता है कि वह युवा व्यक्ति था। एक युवक के लिए ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? यीशु उस युवक को सोचने के लिए प्रेरित करता है। उसने यीशु को अच्छा क्यों कहा? अच्छा तो केवल एक ही है और वह एक परमेश्वर है। यदि वह यीशु को अच्छा कह रहा था तो इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु परमेश्वर है। यीशु उसे वही आज्ञा देता है जो 10 आज्ञाओं के दूसरे भाग में विहित है। मार्कुस 10 उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। मित्रों, 10 आज्ञाओं का पहला भाग परमेश्वर से संबंधित है और दूसरा भाग मनुष्य के संबंध के लिए है। प्रभु ने उसे परमेश्वर के संबंध में आदेश नहीं दिया, उसने उसे मनुष्य से संबंध बनाने को कहा। हम मार्कुस 10 उसके 21 और 22 पद में आगे पढ़ते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है अर्थात कमी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने उससे कहा कि उसमें एक बात की कमी है। वह क्या थी? उसके अनंत जीवन में आने के लिए एक ही बाधा थी, उसका धन। यीशु ने उसे धन से हटकर अपने पीछे आने के लिए कहा था। यदि वह ऐसा करता तो कहां पहुंचता? क्योंकि यीशु तो क्रूस की ओर बढ़ रहा था कि इस मनुष्य के पाप के लिए अपना प्राण दे दे। यदि वह यीशु के पीछे चलता तो क्रूस तक पहुंचता और मुक्ति पाता। परंतु इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी पुरुष था। मित्रों, यहां एक महान संदेश छिपा है। पौलुस कहता है कि धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। पहला तीमुथियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 पद में हम इसे पाते हैं। वह केवल यीशु की बात को दोहरा रहा था। पैसा सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु अनंत जीवन को छोड़कर सब कुछ खरीद सकता है। यीशु के इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि धनवान मनुष्य स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। अपने साधनों द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, जैसा कि बहुत लोग प्रयत्न करते हैं कि उनके दान पुण्य और अच्छे काम करके वे स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मार्कुस 10 उसके 23 से 25 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मित्रों, ऊंट का सुई के छिद्र से निकल जाना असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्कुस 10 उसके 26 और 27 पद में हम पढ़ते हैं, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मित्रों, मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। हम सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। किसी ने कहा है, पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है, भूख नहीं। पैसे से दवाइयां खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। पैसे से मकान खरीदा जा सकता है, परिवार नहीं। पैसे से आराधनालय की कुर्सी खरीदी जा सकती है, परंतु उद्धार नहीं। मित्रों, हमारे लिए इस कथन पर ध्यान करना उचित ही होगा। यीशु ने उस युवक को प्रेरित किया कि वह उसके और परमेश्वर के बीच की बाधा से मुक्ति पाए। यदि वह प्रभु यीशु के पीछे आ जाता तो वह जान लेता कि यीशु अच्छा इसलिए है क्योंकि वह परमेश्वर है। मार्कुस 10 उसके 28 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर आगे लिखा हुआ है, पत्रस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को, पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। मित्रों, यहाँ पर पत्रस को झिड़कने की अपेक्षा यीशु ने आत्मत्याग के प्रतिफल की प्रतिज्ञा दी। मार्कुस 10 उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, पर बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। यह सिद्धांत प्रतिफल देने में अपनाया जाएगा। आगे मार्कुस 10 उसके 32 से 34 में लिखा है, और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठड्डों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। मित्रों यहां पर देखिए कि यीशु यरूशलेम की ओर अग्रसर हैं। वह स्वयं तो इस बात को जानते थे परंतु वह शिष्यों को भी ये बातें बता रहे थे कि उसे वहां मरना होगा। यहां भी वह अपनी मृत्यु के साथ अपने पुनरुत्थान का उल्लेख कर रहे हैं कि वह मरेंगे और फिर से जीवित हो उठेंगे। मार्कुस 10 उसके 35 से 38 पद में आगे पढ़ते हैं, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यहुना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो? मती में भी यह वृतांत है जिसमें दोनों की माता ने यीशु के पास आकर अपने पुत्रों के लिए मांग की थी। जब यीशु ने उनसे पूछा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो, उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। तब हम मत्ती 10 उसके 39 और 40 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। मित्रों हम जानते हैं कि याकूब शहीद हुआ था और यहोना को पतमूस में काला पानी दिया गया था। संभव है कि उसे भी मृत्यु दंड मिला हो, हम नहीं जानते हैं। यीशु ने यह नहीं कहा था कि उसके दाहिने ओर या बाईं ओर कोई स्थान नहीं है। वह स्थान किसी को यूं ही नहीं दिया जाता, उसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। मित्रों आपको स्वर्ग वरदान में तो मिला है परंतु वहां अपने स्थान के लिए आपको कार्य करना होगा। मुक्ति तो निर्मोल है परंतु प्रतिफल के लिए हमें कार्य करना है। यदि आपको प्रतिफल पाना है तो वह आपको बैठे बैठे नहीं मिल जाएगा, उसे पाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। मार्कुस 10 उसके 41 पद में हम पढ़ते हैं, यह सुनकर दसों याकूब और यहुना पर रिसियाने लगे। मित्रों वे इस बात पर अप्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें पद की लालसा थी, अतः प्रभु ने उन्हें एक सबक सिखाया जो सांसारिक रीति पर था। मार्कुस 10 उसके 42 से 44 पद में लिखा है, और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में से ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। मित्रों परमेश्वर सेवा करने वाले दीन मनुष्यों को अगुवाई का स्थान देता है। अगुए को सबका सेवक होना चाहिए। अब वह उन्हें इस सुसमाचार की कुंजी देता है। मार्कुस 10 उसके 45 में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मित्रों यह वृतांत मती में भी है और लुका में भी है। कुछ लोग सुसमाचार वृतांतों की अखंडता को यहाँ चुनौती देते हैं क्योंकि मती के अनुसार वहां दो अंधे व्यक्ति हैं, परंतु मार्कुस केवल बर्तिमाई का उल्लेख करता है जिसने यीशु को ऊंचे शब्द से पुकारा था। मेरे विचार में जो आलोचक सुसमाचार को चुनौती देता है वह तीसरा अंधा व्यक्ति है। मार्कुस 10 उसके 46 से 52 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढाड़स बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मित्रों, यह बड़े उत्साह की बात है कि बर्तिमाय दृष्टिदान के बाद यीशु का अनुयायी हो गया और कुछ समय बाद वह यीशु को क्रूस पर प्राण त्यागते हुए देखेगा। क्या आप भी अंधे हैं या आपने यीशु को क्रूस पर प्राण त्यागते हुए देखा है? देखो और जियो। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आपको नई बातों की जानकारी मिली है और आपने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किया है। यहाँ पर हमें कुछ मुख्य विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, संसार की मोह अर्थात उस युवक के समान धन में ही नहीं लिपटे रहना है, अन्यथा धन के बाधा के कारण हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, हमें नम्र होना है बालकों के समान ताकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी लोग बन जाएं। मेरे मित्रों, इस अंधे व्यक्ति को परमेश्वर ने दृष्टि दी ताकि वो उसके पीछे हो लिए। आज मेरे लिए और आपके लिए भी अवसर है कि हम भी उस दृष्टि को पाएं और उसके पीछे हो लें ताकि हम स्वर्ग में उसके साथ हों। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, भटके कदम को तेरे वचन ने राह पर लाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। तेरे बिना था जीवन दुखिया रा, पाया तुझे तो पाया जग सारा, तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया पाया तुझे तो पाया जग सारा, तुझको ही पाने की थी दिल में आस, तुझे जब से चाहा हुआ ये एहसास। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया।